नमस्कार, आज हम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी के एक बहुत ही अनूठे उद्बोधन पर चर्चा कर रहे हैं। यह अखंड ज्योति पत्रिका में प्रकाशित हुआ था और शीर्षक है परिव्राजक परंपरा का पुनर्जीवन।
जी, एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है ये।
हाँ, और हमारा मकसद है इस प्राचीन परंपरा के उन पहलुओं को समझना जिन्हें पूज्य गुरुदेव ने आज के समय के लिए, मतलब हमारे लिए, जरूरी बताया है। ये सिर्फ घूमना फिरना नहीं है जैसा कि कई लोग सोच सकते हैं।
बिल्कुल नहीं, इसमें तो व्यक्तिगत और सामाजिक विकास के गहरे सूत्र छिपे हैं।
सही कहा, पूज्य गुरुदेव तो कहते हैं कि इसमें स्वार्थ और परमार्थ दोनों का एक अद्भुत संगम है। तो चलिए इसी संगम को थोड़ा खोलते हैं। सबसे पहले स्वार्थ की बात करें, यानी अपना हित।
हाँ।
इसमें पहला और शायद सबसे बड़ा फायदा बताया गया है सेहत, स्वास्थ्य संवर्धन। पूज्य गुरुदेव टहलने को, मतलब पैदल चलने को, सबसे अच्छी कसरत मानते थे। गांधी जी भी यही कहते थे।
जी हाँ, बिल्कुल। और देखिए, इसी बात को समझाने के लिए उद्बोधन में बगदाद के एक हकीम का बड़ा ही दिलचस्प किस्सा दिया गया है। एक अमीर जमींदार थे, बीमार रहते थे। वो हकीम के पास गए।
अच्छा,
तो हकीम साहब ने उन्हें दवा तो दी, मगर एक अजीब सी शर्त रख दी। कहा कि दवा को पसीने में मिलाकर चाटना होगा, और वो पसीना भी पैदल चलने से आना चाहिए, धूप में बैठने या कसरत से नहीं।
अरे कमाल की बात। और मैंने सुना है कि वो दवा की पुड़िया में असल में दवा थी ही नहीं, शायद मिट्टी थी।
हाँ, सुनने में तो यही आता है, दवा तो बहाना था, असल इलाज तो वो रोज तेज चलना था। और कहते हैं कि महीने भर में वो जमींदार बिल्कुल ठीक हो गए।
तो मतलब चलना ये शरीर में रक्त संचार सुधारता है और कई बीमारियां खुद ब खुद दूर हो जाती हैं।
ये हुआ परिव्राजक जीवन का एक सीधा सीधा स्वार्थ, अपना फायदा।
बिल्कुल, ये तो हुआ स्वास्थ्य लाभ।
हाँ, अब दूसरा व्यक्तिगत लाभ है अनुभव। पूज्य गुरुदेव का मानना था कि असली व्यवहारिक समझ वो सिर्फ पुस्तकों से नहीं आ सकती।
सही बात है, वो तो लोगों से मिलने जुलने से आती है, मतलब जनसंपर्क और तरह तरह के हालात का सामना करने से।
हाँ, और यहाँ एक बहुत अहम नुक्ता उठाया गया है, वो ये कि अनुभव की कमी इंसान को व्यवहारिक जीवन में कमजोर बना सकती है, चाहे वो कितना ही पढ़ा लिखा क्यों ना हो।
अच्छा
जी, उद्बोधन में खास तौर पर स्त्रियों के सीमित जनसंपर्क की बात की गई है, क्योंकि उनका दायरा छोटा होने की वजह से वो कई बार आसानी से भ्रमित हो सकती हैं या ठगी जा सकती हैं, क्योंकि उनकी दुनिया अक्सर कुछ ही लोगों तक सिमटी रहती है।
और शायद इसी अनुभवहीनता से वो चीज पैदा होती है जिसे आत्महीनता कहते हैं, मतलब वो झिझक, शर्म, अपनी बात ठीक से ना कह पाना।
बिल्कुल वही। और परिव्राजक परंपरा में क्या होता है, आप नए लोगों से मिलते हैं, बात करते हैं, तो ये झिझक अपने आप टूटती है, आत्मविश्वास बढ़ता है, व्यक्तित्व का विकास होता है।
सही कहा। तो ये तो हो गए स्वार्थ के पहलू, सेहत और अनुभव। अब आते हैं परमार्थ पर, मतलब दूसरों की भलाई। यहाँ पूज्य गुरुदेव भौतिक दान से ज्यादा ज्ञान दान पर जोर देते हैं।
जी,
जैसे पैसा, भोजन, कपड़े, ये सब।
जी, उनका कहना था कि ये चीजें देना तात्कालिक मदद तो है, पर ये स्थायी समाधान नहीं है, मतलब कुछ देर की राहत है बस।
हाँ,
इसके लिए उद्बोधन में मोहम्मद साहब का एक बड़ा ही प्रेरक उदाहरण दिया है। एक जरूरतमंद ने उनसे मदद मांगी, तो उन्होंने उसे सीधे भीख नहीं दी।
अच्छा, तो क्या किया?
उन्होंने उसका जो लोटा था उसे बिकवा दिया, और जो पैसे मिले उससे एक कुल्हाड़ी और रस्सी खरीद कर दी, और उसे सिखाया कि जाओ जंगल से लकड़ी काटो, उसे बेचो और अपनी रोजी रोटी कमाओ, आत्मनिर्भर बनो।
क्या बात है, मतलब असली मदद है किसी को अपने पैरों पर खड़ा करना सिखाना, जीवन जीने का तरीका बताना।
बिल्कुल, हुनर देना, समझ देना।
मतलब जीवन जीने की सही समझ की कमी। उनका मानना था कि स्कूली पढ़ाई भी इसे पूरी तरह दूर नहीं कर पाती।
हाँ, क्योंकि वो ज्यादातर किताबी ज्ञान है, व्यवहारिक समझ अलग चीज है।
तो इस बेअकली को दूर करने के लिए ज्ञान को, समझ को घर घर तक पहुंचाना होगा, वो खुद चल के नहीं आएगी।
सही। और इसी से जुड़ा एक और गहरा पहलू है परिव्राजक जीवन का तप और प्रायश्चित।
तप मतलब वो कष्ट सहना, पैदल चलना, धूप सर्दी झेलना, खाने पीने का ठीक न होना, ये सब।
हाँ, लेकिन ये सिर्फ कष्ट सहना नहीं है, इसे एक तरह का तप माना गया है, और इसे उन भूलों का प्रायश्चित भी समझा गया है जिनसे हमने जाने अनजाने समाज को कोई हानि पहुंचाई हो। ये सिर्फ गंगा नहाने जैसे प्रतीकात्मक कामों से अलग है, ये कर्म के द्वारा शुद्धि का मार्ग है।
अच्छा, यानी ये सिर्फ शारीरिक कठिनाई नहीं है, बल्कि एक तरह से मन को मांझने और अपनी सामाजिक जिम्मेदारी को समझने की प्रक्रिया भी है।
इससे आत्म अनुशासन भी आता है और सामाजिक चेतना भी मजबूत होती है।
तो अगर हम सार निकालें
पूज्य गुरुदेव की नजर में ये परिव्राजक परंपरा सिर्फ घूमना फिरना नहीं है, ये तो सेहत सुधारने, दुनियादारी सीखने, अपनी झिझक मिटाने, ज्ञान बांटकर समाज की सच्ची सेवा करने और तप के जरिए खुद को निखारने का एक पूरा पैकेज है, एक समग्र मार्ग है।
जी, उनका संदेश बिल्कुल साफ है। आज के युग में जहां वो कहते हैं बेअकली फैली हुई है, वहां ज्ञान लेकर लोगों तक जाना होगा। इंतजार नहीं करना है कि लोग ज्ञान लेने आएंगे, जैसे बादल पानी लेकर खुद बरसने जाते हैं, वैसे ही ज्ञानवान को अपना ज्ञान लेकर समाज के बीच जाना होगा।
ये बात तो सोचने वाली है। और इस पूरी चर्चा के बाद मेरे मन में शतपथ ब्राह्मण की वो उक्ति गूंज रही है, चरई वेती, चलते रहो चलते रहो। आज के समय में ये बात व्यक्तिगत और सामाजिक तरक्की के लिए कितनी जरूरी है ना? कहते हैं जो चलता है उसका भाग्य भी चलता है, इस पर विचार किया जा सकता है।
निश्चय ही, ये आज भी उतना ही प्रासंगिक है।